مجلس شروع کرنے سے پہلے ایک اسپیشل ریکویسٹ یہ ہے کہ اگرچہ امام بارگاہ کا یہ ہال مجھے پیک نظر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی بیچ میں جگہ جگہ کچھ اسپیس ہے. آپ حضرات سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جتنا آپ حضرات قریب آ سکتے ہیں قریب آ جائیں، تاکہ وہ مومنین جو سردی میں باہر کھڑے ہیں انہیں زحمت نہ ہو. کربلا کا واقعہ تو ایک دوسرے کے لیے سیکریفائز کرنے اور قربانی دینے کا نام ہے. 55 منٹ کے لیے ذرا سی زحمت برداشت کریں تاکہ دوسرے مومنین کو آسانی ہو. اور جس دوران آپ لوگ آگے آ رہے ہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے، دوسرے مومنین دوسری عبادت کا ثواب حاصل کریں اور درود بھیجیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، والصلاة والسلام علی شفیع المذنبین ابی القاسم محمد. وآلہ وعطرته وآل بیته الطیبین الطاہرین المکرمین المظلومین، ولعنة اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. صلوات آج کی مجلس میں شروع ہی میں میری جانب سے ایک معافی یا اپولوجی کہ ڈیو ٹو امپورٹنٹ ریزن آج کی مجلس میں 15 سے 20 منٹ ایک ایسا واقعہ آئے گا جو میں 3 سال پہلے عشرہ زینبیہ کی پہلی مجلس میں بھی پڑھ چکا ہوں. اور ٹھیک ہے، لوگوں کی میموری اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی میری یہ ڈیوٹی تھی کہ میں ان مومنین سے معافی مانگ لوں جو اس مجلس میں بھی تھے. اور اس کا ریزن جو ہے وہ آج ہی کی مجلس کے آخر میں آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس واقعے کو کیوں ریپیٹ کیا گیا. اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات کل ڈیٹیل سے آپ کے سامنے آئے. آج میری مجلس سے پہلے مرثیہ بھی جناب عباس کے حال کا پڑھا جا رہا تھا، اور میری مجلس کا ٹاپک بھی اسی جانب جا رہا ہے جس کے لیے اس واقعے کو میں ریپیٹ کروں گا، لیکن ابھی نہیں بلکہ مجلس کے اینڈ میں. شروع میں دو اور چھوٹی چھوٹی باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ مجالس میں شریعت کے یا فقہ کے مسائل کو ڈیٹیل میں بیان کرنے کا موقع نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی ٹاپک کے اندر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے جس میں چھوٹا سا کوئی مسئلہ آ گیا ہو، اور کیونکہ اس کی ڈیٹیل نہیں آتی ہے اس لیے کوئی کنفیوژن کریٹ ہو جاتا. گھر کے ٹائم ویسے ہی ہمارے پاس بہت لمیٹڈ ہے، لیکن کل کی مجلس کے آخر میں جو ایک مسئلہ آیا تھا کہ عورت اور مرد اگر ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو مرحوم آغا خوئی کے فتوے دونوں کے درمیان ایک بارش کا ڈسٹینس ہونا چاہیے منیمم. اور آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ تو نہیں، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ 15 فٹ کا ڈسٹینس ہونا چاہیے. لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب دونوں سائڈ بائی سائڈ ہوں، یا عورت آگے ہو اور مرد پیچھے ہو. اگر مرد آگے ہے اور عورت پیچھے تو ڈسٹینس کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ان مومنین کی کمپلین کا جواب ہے جنہوں نے کہا کہ مولانا ہمارے یہاں تو گھر اتنے چھوٹے کہ اگر ہم 15 فٹ کا خیال کریں تو ایک آدمی کو گھر کے باہر جا کے نماز پڑھنا پڑے گی. مرد آگے ہو جائے عورت پیچھے ہو جائے تو یہ مسئلہ ہی سالو ہو جاتا ہے. اور بھی اس میں کئی باتیں ہیں جو بعد میں آئیں گی، لیکن ایک مسئلہ تھا اس کے اندر، کیونکہ یہ ڈیٹیل بیان کرنے کا ٹائم نہیں تھا کہ کون سی پوزیشن ہو جو 15 فٹ کا فاصلہ ہے، اس لیے وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. تو اس کا ان شارٹ رپلائی یہ ہے کہ یہ اس وقت فاصلہ ہے، یہ ڈسٹینس،
जब दोनों बराबर हो या औरत आगे। दूसरी एक छोटी सी बात ये कि ऑल्दो अपने हिसाब से मैं हज के टॉपिक पर जो बातें करना चाहता था वो कंप्लीट हो गई, लेकिन चूंकि पहली तीन मजलिसों में हज का कुछ बयान आ गया तो अभी भी एक आध मजलिस में हज का कोई न कोई छोटा मोटा पॉइंट आपके सामने रहेगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये बता दूं कि कुछ हाजी इस टाइप के भी होते हैं। अभी इसी साल हज करने के बाद मैं पाकिस्तान गया और फिर पाकिस्तान से जब मैं मेलबर्न जा रहा था तो ये तकरीबन 22-24 घंटे की फ्लाइट होती है। रास्ते में रीडिंग के लिए मैंने एक मोमिन का, जिनका नाम है मिस्टर नकवी, अशवाक नकवी, उनका हज का सफरनामा उन्होंने अपनी बल्कि ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसमें हज का चैप्टर भी है। ये अभी 2006 में ये बुक छपी थी और जब मैं पाकिस्तान से मेलबर्न यानी ऑस्ट्रेलिया जा रहा था तो ये किताब मैंने ली। किताब तो बहुत ही डिटेल किताब है। मैंने उसका वो चैप्टर खोला जिसके अंदर उन्होंने अपने हज का डिस्क्रिप्शन किया था। देखिए प्रिंटेड मैटर इसी साल ये बुक छपी, अशवाक नकवी साहब इसके ऑथर और वो अपने हज का सफरनामा लिख रहे हैं। ये अभी भी ये हालत है लोगों की, कहते हैं कि मैं हज पे गया, बहुत ही ज्यादा टायरिंग जर्नी था अराफात और मीना और बहुत ही बोरिंग। सुना के जब मैं वापस आया, इनकी पोस्टिंग रियाद में थी, गवर्नमेंट की जानिब से ऑन डिपोर्टेशन रियाद से भेजे गए हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ, तो मैं इतना थक चुका और इतना बोर हो चुका कि अपनी बोरियत और थकन को दूर करने के लिए पहला काम मैंने ये किया कि दिल खोल के शराब पी और 3 दिन तक उसके नशे में पड़ा रहा, तब जाके मेरा हज का सफर कंप्लीट हुआ। ये अभी मैं बात कर रहा हूँ, बुक मेरे पास मौजूद भी है। हो सकता है कि किसी और आदमी का भी ऐसा एक्शन हो, लेकिन कितने करेज और हिम्मत की बात है कि इस चीज को प्रिंट करके दुनिया के सामने पेश कर दें। और अजीब बात यह है कि अपने आप को अहले बैत का फॉलोअर भी मानना, भाई इतना ही शौक था तो नाम चेंज कर देते, इमाम से अपना रिलेशन जाहिर करने की जरूरत क्या थी। मैं इसको इससे ज्यादा रिपीट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि इसमें खुद मुझे ईमान की इंसल्ट फील हो रही, लेकिन ऐसे हाजी भी। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, जब 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल हज के लिए ये कह चुके हैं कि आखिरी जमाने में सही इंटेंशन के साथ हज करने वाले तो बहुत होंगे, बहुत कम होंगे। हाजियों की तादाद बहुत ज्यादा होगी, नीयत सही करके हज करने वाले बहुत कम होंगे। और जब सही नीयत के साथ हज करता है तो हज इतना बेनिफिट आदमी को दिलवाता कि उसमें से एक छोटी सी बात मैं आज और बता रहा हूं, इसलिए कि आमतौर पर वेस्ट से जाने वाले ये टाइम उनके पास इतना कम होता कि वो इस पॉइंट की जानिब इतना ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करते। हम लोग जब इंडिया से या पाकिस्तान से जाते हैं, हमारा हज 6 वीक का होता है, 7 वीक का होता, टाइम बहुत ज्यादा, आपके पास टाइम शॉर्ट है। लेकिन फिर भी सुन लीजिए, शायद ये बात काम आ जाए। कुरान करीम ने एक अजीब मंजिल पर पहुंचकर तमाम मोमिनों के सामने, चाहे वो मर्द हो के औरतें, एज ए रोल मॉडल 2 औरतों का तस्किरा किया। ضرب الله مثلا للذين آمنوا, अल्लाह तमाम ईमान लाने वालों के सामने एक एग्जाम्पल पेश करता, एक मर्दों की नहीं। ये सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 की लास्ट 2 वर्सेस, सूरह 67 तो बड़ा फेमस है, सूरह मुबारक है मुल्क, उससे पहले वाला सूरह, उसके लास्ट 2 वर्स ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا, اللہ ایک ایگزامپل پیش کر رہا ہے, ایک ماڈل, رول ماڈل کے طور پر تمام مومنوں کے لیے, خالی عورتوں کے لیے نہیں, عورت اور مرد دونوں کے لیے. امراۃ فرعون, فرعون کی بیوی کی مثال پورے قرآن میں کئی جگہ پر اچھی اور بری عورتوں کا ذکر آیا. نام خالی حضرت مریم کا آیا ہے, ورنہ کوئی اور عورت ہیومن ہسٹری کی ایسی نہیں جس کا پراپر نیم لے کر قرآن نے اس کا ذکر کیا. تو یہاں صرف اتنا کہا کہ فرعون کی بیوی, ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جناب آسیہ کا تذکرہ. اب خدا جو ایز اے رول ماڈل ان کو تمام مردوں اور عورتوں کے سامنے پیش کر رہا, تو کیوں؟ ورب اللہ مثلا للذین آمنوا امراۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. جب وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اے اللہ میرے لیے جنت میں گھر کو بنا, مجھے فرعون سے بھی نجات دلا اور فرعون کے عمل اور کیریکٹر سے. دیکھیں ایکچوئل تبرہ یہ ہوتا کہ آدمی دشمن اہل بیت سے بھی ہیٹ کرے اور اس کے کیریکٹر سے بھی ہیٹ کرے. یہ نہ ہو کہ زیارت عاشورہ میں کہہ رہے ہو کہ لعن اللہ علی عمر ابن سعد, اللہ کی لعنت ہو عمر ابن سعد پر, اور وہ جس دولت کی لالچ میں سربراہ گیا تھا اسی دولت سے ہمیں اتنی محبت کہ آج بھی ہم شریعت کو اور اہل بیت کو اور اسلام کو اس دولت کی خاطر قربان کر دینے کو یا چھوڑ دینے کو تیار. خالی عمر صاحب کو ہیٹ کرنا کافی نہیں ہے, اس کے کیریکٹر کو. اور یہ ڈیٹیل شاید اس سال اس عشرے میں نہ آ سکے کہ وائے عمر صاحب شم اور یزید یہ اہل بیت کے اتنے ڈیڈلی اینیمی کیوں تھے, ان کا کیریکٹر کیا تھا. لیکن بہرحال ان شارٹ قرآن نے کہا فرعون سے بھی نجات اور اس کے عمل سے بھی. یہ ڈیٹیل چھوڑی, جناب آسیہ کے بارے میں پہلے ایک جملہ سن لیجیے, اس کے بعد جناب آسیہ کا قرآن کریم میں جو کوٹیشن آیا, جو ان کی دعا آئی ہے, اس کو دوبارہ دیکھیے, اور پھر حج کی ایک اور امپورٹنس یا سگنیفیکینس. جناب آسیہ کے بارے میں ایک جملہ کافی, بہار الانوار کی حدیث کہ اللہ اس دنیا میں تو رسول خدا کی کئی وائفس ہیں اور ان میں سے بہت ساری جنت میں بھی رسول کو ملیں گی. خالی رسول کی بات نہیں, آپ کی بھی یہی بات, آپ کو بھی آپ کی یہی والی وائف جنت سے ملے گی. لوگ کہتے پھر ہمیں جنت نہیں چاہیے, اس کے لیے کھوڑی حور چاہیے. حور کے بارے میں ایک جملہ سن لیجیے, آج ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں. حور کے ساتھ ٹائم پاس کیا جا سکتا ہے, زندگی نہیں گزاری جا سکتی. زندگی گزارنے کے لیے ایک مومنہ ہی کا رول ہونا چاہیے, اور ایک دو دن کے بعد یہ بات ڈیٹیل کے ساتھ آئے گی. اب رسول خدا کی ایٹ لیسٹ 11 وائف ہسٹری میں, اور ان میں سے یقیناً میجورٹی پیغمبر کے ساتھ قیامت میں بھی جنت میں ساتھ ہوگی. لیکن ہمارے سامنے جنت میں رسول خدا کی وائفس میں سے صرف دو کے نام آئے, باقی کو ڈینائی نہیں کیا گیا لیکن ان کے نام نہیں آئے. ایک ہے کہ رسول خدا کی پہلی وائف جنت میں بھی حضرت خدیجہ طاہرہ ہوں گی. اس سمجھ میں آتا جس نے دنیا میں رسول کے لیے اتنا سیکریفائس کیا. لیکن یہ سمجھ میں تو آتا ہے, اس سے ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوتی ہے, کوئی عجب بات نہیں رکھتی. اتنا ہائی اسٹیٹس ہے خدیجہ کا کہ اگر اس دنیا میں رسول کی وائف ہے تو جنت میں بھی ہونا چاہیے. سیکنڈ نام آتا ہے جناب آسیہ کا, کہ یہ آسیہ جنت میں رسول خدا کی سیکنڈ وائف ہوگی. یہ کتنی سرپرائزنگ بات, جو اس دنیا میں فرعون کی بیوی ہے. فرعون کون؟ نہ صرف یہ کہ اللہ کا دشمن, بلکہ جو دنیا کا سب سے بڑا گناہ, اللہ شرک کا گناہ معاف نہیں کرتا, باقی ہر گناہ معاف کرتا. دو جگہ قرآن کریم میں یہ اللہ کا میسج. اور فرعون خالی شرک نہیں کرتا ہے, انا ربکم الاعلی, لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے اپنا رب مانو. اتنا بڑا دشمن خدا جو اس کے گھر میں ہے, جنت میں وہ رسول خدا کے گھر میں پہنچ رہی. دیکھیے خدیجہ اس دنیا میں بھی حبیب خدا کے گھر میں تھی, और वहां भी हबीब खुदा के घर में थी। जो सही मानों में स्टेटस हाई हुआ है वो जनाब आसिया का, कि यहाँ दुश्मन खुदा के घर में है और आखिरत में हबीब खुदा के घर में जा रही है। मगर वाई, रीजन क्या? रीजन जनाब आसिया का वो सेक्रीफाइस, कि जब दीन के मसले पर, रिलीजन के मसले पर, शरीयत के मसले पर शौहर से भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और वो कुर्बानी भी कि आखिर फिरौन ने टॉर्चर करते करते
उनके चारों, दोनों हाथ दोनों पैर से चार घोड़े बांधे और फोर डिफरेंट डायरेक्शन में ये घोड़े दौड़ाए और उनका सारा जिसम चार पीसेस में टुकड़े टुकड़े हो गया। लेकिन रिवायत का ये जुमला कि जिस वक्त हजरत आसिया पे ये टॉर्चर हो रहा था तो कुरान कहता है वो दुआ मांग रही, रब्बिफनी ली बैतन इंदका फिल जन्ना, अरे खुदा जन्नत में मेरे लिए घर बना। और हजरत मूसा उनके करीब से गुजरे, मूसा वो जिन्हें जनाब आसिया ने बचपने में पाला, इनकी नर्सिंग की। एक बार मूसा ने अपनी जस्ट लाइक मदर आसिया को देखा, आंखों में आंसू आ गए और एक मर्तबा कहा कि है मेरी माँ, इस वक्त आप पे इतना टॉर्चर हो रहा, कोई आपकी ख्वाहिश है, कोई आपकी तमन्ना है? कहा कि है मेरे नबी, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि जन्नत में मेरा घर बना दे, मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ मेरी दुआ अल्लाह ने एक्सेप्ट की है कि नहीं की है, मरने से पहले जन्नत में मुझे अपना घर नजर आ जाए। जनाब मूसा एक बार इशारा किया और आसिया जन्नत को देख रही और जन्नत में अपने घर को देख रही, चेहरे पे मुस्कुराहट आई और फिरौन के की आर्मी लास्ट ऑर्डर लेके आ गई कि अब जनाब आसिया की बॉडी को चार पीसेस में तकसीम कर दिया जाए। दुनिया से जाते जाते आखिरी जो दुआ आसिया की कबूल हुई वो ये कि जन्नत में अपना घर देखा, मगर कितने टॉर्चर के बाद, कितना सेक्रीफाइस देने के बाद, फिरौन के महल में रहती थी, दुनिया की हर सहूलत और फैसिलिटी और लग्जरी थी। जो मैंने दो दिन पहले मजलिस में कहा था कि हम और आप एक अच्छे खासे इस्लामिक एनवायरमेंट को छोड़कर लग्जरी के लिए अगर ऐसी जगह जाते हैं जहां दीन पे अमल करना मुश्किल होता, और आसिया वो हैं जो फिरौन की बीवी है, फिरौन अपने आप को खुदा कहता है, उसके महल में क्या कुछ ना होगा, लेकिन जब दीन की और रिलीजन की बात आई आसिया ने सब कुछ छोड़ दिया और ये सारे टॉर्चर बर्दाश्त किए, अल्लाह ने जन्नत में घर बनाया और जनाब आसिया ने वो घर देखा। अब आइए हमारे पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहि सलातु वस्सलाम की यह हदीस, इमाम की हदीस सुनिए। इमाम फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी मक्के के हिस्से के दरमियान एक कंप्लीट कुरान मक्के में पढ़ता है तो अल्लाह उसकी मौत से पहले पहले उसे अपनी आंखों से जन्नत में अपना घर दिखाएगा। जब आप एक कंप्लीट कुरान मक्के में खत्म करते हैं तो खाली ये नहीं कहा इमाम ने कि जन्नत में तुम्हारा घर बनेगा, काम मरने से पहले तुम जन्नत में अपने घर को देखोगे। हमारा लास्ट सलाम, वी सैल्यूट जनाब आसिया। जनाब आसिया ने इतना सेक्रीफाइस देने के बाद जिस मंजिल को पाया, जो नेमत उन्हें मिली, जो ब्लेसिंग अल्लाह की हुई कि मरने से पहले जन्नत में अपना घर देखा, ये सफर उमरा, ये आपका हज का ट्रिप आपको जनाब आसिया के इस स्टेटस पर पहुंचा रहा है कि अगर एक कंप्लीट कुरान मक्के में आप, मक्के के अपने हिस्से में आप एक कुरान कंप्लीट करें, अपनी मौत से पहले पहले जन्नत में अपना घर भी देखेंगे। और सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातु वस्सलाम इसके बाद वो मैसेज दे रहे हैं जो जन्नत के घर से भी बड़ा, और कहा कि ऐसा आदमी जिसने मक्के में कुरान खत्म किया है वो अपने मरने से पहले हमारे जज रसूल खुदा की फेस टू फेस जियारत इसी दुनिया में करेगा। अरे जन्नत का घर भी कोई हैसियत नहीं रखता अगर हमें रसूल खुदा की फेस टू फेस जियारत मिल रही है, मगर शर्त ये कि आदमी मक्के के हिस्से को عبادت سمجھے، وہاں قرآن کی تلاوت کرے. میں تو مکے میں حاجیوں کے کمروں میں جاتا ہوں تو وہاں بھی غیبتیں جاری ہیں، وہاں بھی ہنسی اور مذاق ہو رہے ہیں، وہاں بھی مسخری کی جا رہی ہے، وہاں بھی تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، یہ کمپلین کرتے ہیں حاجی. لیکن حج کی اتنی تمام تر عظمت کے بعد، حج کی اس تمام تر سگنیفیکینس کے بعد، اب آئیے دو چھوٹے سے جملے. پہلا جملہ انکمپلیٹ ہے، یہ ٹاپک بعد میں آئے گا. وہ یہ ہے کہ بہرحال حج اپنی جگہ، لیکن نماز کی امپورٹینس کم نہیں ہے، بلکہ وتھ ڈیو ریسپیکٹ. میں حج کی توہین نہیں کر رہا ہوں، میں حج کے اسٹیٹس کو کم نہیں کر رہا ہوں. اگر آپ واقعان حدیثوں میں دیکھیں کہ نماز کسے کہتی، میں نے کہا نماز تو ایک اتنا کمپلیٹ کوڈ آف پریکٹس ہے کہ یہ بات کی کسی مجلس میں آئے گا، لیکن ایک جملہ یاد رکھیے کہ حج اور نماز کا کمپیریزن نہیں کر رہا ہوں. لیکن حج میں ہمیں اللہ کے پاس جانا ہوتا، اور نماز میں اللہ ہمارے پاس آتا. حدیث ہے کہ جب مومن نماز پڑھتا ہے، الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج ہے نماز. جیسے 27 رجب کی رات کو رسول اللہ کی معراج ہوئی تھی کہ رسول اللہ کے سامنے پہنچے فیس ٹو فیس. ہم اللہ کے فزیکل وجود تو نہیں مانتے، لیکن معراج کا مطلب یہ ہے کہ ایز کلوز ایز پاسبل. کہا کہ جس طرح شب معراج رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں گئے، اب صلاۃ معراج المومن، یہی نماز جو تم دن میں 5 بار پڑھتے ہو، یہ تمہاری معراج ہے. تم اللہ کے اتنا کلوز ہو جاتے ہو نماز میں جیسے شب معراج رسول اللہ کے کلوز ہو گئے تھے. ہر دن 5 مرتبہ آپ اللہ کے اتنا قریب چلے جاتے ہیں. تبھی تو جب راوی نے پوچھا مولا ذرا مجھے ٹیچ کریں کہ میں نماز کیسے پڑھوں، بہت ساری حدیثوں کو بہت شارٹ کر کے بیان کر رہا ہوں، امام نے کہا جب نماز پڑھو تو یہ سمجھو کہ جیسے تم اللہ کے سامنے اور اللہ کو دیکھ رہے، ہینڈ شیکنگ ڈسٹینس ہے تمہارے اور اللہ کے درمیان. پھر تو راوی نے کمپلین کی، مولا ایسا تو نہیں ہو سکتا، وہ ایک الگ حدیث ہے. تو حج میں آپ یہاں سے وہاں جاتے ہیں تاکہ اللہ کے پاس پہنچے، اور ہر نماز کے وقت اللہ چل کے آپ کے پاس آتا ہے. آپ اللہ کو فیس ٹو فیس دیکھ رہے ہیں، آپ کے اور اللہ کے درمیان ہینڈ شیکنگ ڈسٹینس ہے. اسی لیے روایت یہ ہے کہ جو دعا کہیں قبول نہ ہوتی ہو، نماز کے قنوت میں وہ دعا مانگو، دیکھو کہ کتنے جلدی قبول ہوگی، کیونکہ نماز کے وقت تم اللہ کے پاس ہو. وہ 2-2-4-3-7-4 جو ایک زمانے میں 20 سال پہلے میں اسی امام بارگاہ میں پڑھ کے گیا تھا، وہ اسی لیے تو جوک لوگوں نے بنایا ہے کہ اگر اللہ سے آپ کو ڈائریکٹ بات کرنا ہو تو یہ اللہ کا ٹیلی فون نمبر 2-4-4-3-4. اس لیے کہ واقعان حج اپنی جگہ، حج کی امپورٹینس اپنی جگہ، لیکن نماز بھی کوئی کم اہم عبادت نہیں ہے. ہم اور آپ اپنی نمازوں کو ویسٹ کرتے ہیں، اس کی امپورٹینس نہیں سمجھتے، اس کی فلسفی نہیں سمجھتے. یہ اپنی جگہ رکھیے. اور آئیے دوسرا اور آخری جملہ حج سے ریلیٹڈ، اور وہ یہ ہے کہ اسی حج میں اسلام نے ہمیں دو ایسی دعائیں سکھائی، ایک جب حج اسٹارٹ ہو رہا تھا، اور ایک قیامت تک جب بھی آدمی حج کرے گا. ایک کا تعلق ہے جس دن خانہ کعبہ بلڈ ہو رہا تھا، یہ حج کی دو دعائیں. نماز میں ہر دعا قبول ہے، لیکن حج کی دو اسپیشل دعائیں اسلام نے ہمیں بتائی ہیں. ایک جس دن خانہ کعبہ بن رہا تھا، جو کل میں نے پڑھی تھی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جس دن خانہ کعبہ بلڈ کیا جا رہا تھا، جب ابراہیم اور اسماعیل پہلا حج کرنے والے تھے، ایک وہ دعا جو کمپلیٹ میسج ہے اسلام کا، لیکن اس کو چھوڑ دیجیے. اور دوسری دعا یہ حج کی دعا ہے، قرآن کریم میں یہ دعا آئی ہے، جو آج بھی بہت سے لوگ اپنی نماز میں پڑھتے ہیں. اور یہ دعا ویسٹ میں ہماری سب سے بڑی ریسپانسبلٹی بتا رہی ہے، حج کی دعا. قرآن میں یہ دعا آئی ہے، کانٹیکسٹ کیا؟ حج. اور یہی وہ دعا ہے جو ہم نماز میں ریپیٹ کرتے ہیں. یہ دعا وہ ہے جو حج اور نماز کو ملا دیتی ہے. قرآن کریم حج کا ذکر کر رہا، حج کی ہسٹری نہیں بتا رہا. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، وہ حج کی ہسٹری. جب ابراہیم کعبہ بنا رہے تھے تو یہ دعا مانگ رہے تھے. اور دوسری والی دعا حج کی ہسٹری نہیں ہے، کرنٹ حج، ریگولر حج. ہر شخص جب حج پہ جاتا، قرآن کہہ رہا کہ حج کے درمیان عرفات جاؤ، فَإِذَا فَسْتُمْ مِنْ عَرَفَاتِ فَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، عرفات سے چلو تو مزدلفہ میں آؤ، مسجد مشعر الحرام کے قریب ذکر خدا کرو، اور پھر قرآن بٹوین مزدلفہ اینڈ منا، جنہوں نے حج نہیں کیا ان سے خالی آج یہ جملے کی اپالوجی، مزدلفہ اور منا کے بٹوین ایک دعا ان کو سکھا رہا، آفٹر مزدلفہ بفور منا، قرآن کہہ رہا وہ من الناس، حج کی بات ہے، عرفات مزدلفہ، اب منا کا ذکر ہونے والا، اس کے بیچ میں قرآن رکا اور کہا کہ دیکھو یہ اتنے سارے لوگ حج کرنے آئے ہیں، ومن الناس من یقول، اب ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وما لهم فی الآخرة من خلاق، جو کہتے ہیں اللہ جو کچھ دینا ہے دنیا میں دے دے، انہیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، ومنهم، اور حاجیوں میں کچھ ایسے ہیں، من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، جو کہتے ہیں دنیا میں بھی ہمیں خیر دے، آخرت میں بھی ہمیں بہتر چیز دے، اور عذاب النار سے بچا، یہ والی مشہور دعا جو اکثر لوگ اپنی نماز کے قنوت میں بھی پڑھتے، اس میں ہر چیز آ گئی ہے، یہ دعا حج کے کانٹیکسٹ میں آئی ہے، مزدلفہ اور منا کے درمیان قرآن حاجیوں کی دو کیٹیگری کر رہا، ایک حج پر آتے ہیں ساری دنیا کے لیے، ایک حج پر آتے ہیں انہیں دنیا بھی چاہیے، انہیں آخرت بھی چاہیے، اب یہاں پہ پہلے سے چھوٹ بات اس دعا کے لیے بھی کہہ دوں، یہ دعا ہم اور آپ نماز میں بھی پڑھتے، ریگولر لائف میں بھی پڑھتے، حج کی دعا بلکہ دعا نہیں ہے، حج کی کیٹیگری ہے، حاجیوں کی کیٹیگری ہے، یہ دعا جو ہے 100% یہ دعا کب ٹرو ہوگی، وہ کون ہوگا کہ جب دنیا بھی ہمارے لیے اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی اور جہنم کے عذاب سے بچیں گے، 100% تو یہ دعا ہمارے سامنے آئے گی جب ہمارے امام کی حکومت اسٹیبلش ہو جائے گی، تب دنیا میں بھی ہمیں سب ملے گا، آخرت میں بھی ہمیں سب ملے گا، جہنم کے عذاب سے بھی بچے ہوں گے، لیکن وہ ٹاپک ایک الگ ٹاپک ہے، ریگولر لائف میں جب یہ دعا ہم مانگتے ہیں تو اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ میسج، اور ویسٹ میں آج کے لیے سب سے زیادہ بڑی ڈیوٹی یہی، اور وہ کیا، یہ دعا بتا رہی ہے کہ کمپلیٹ مومن کسے کہتے ہیں اور دجالی مومن کسے کہتے ہیں، مومنوں کی دو قسمیں، ایک امام والا مومن ہے، ایک دجال والا مومن ہے، دجال دجال دجال، بلکہ گجراتی اور اردو میں تو ہم لوگ دجال بھی نہیں کہتے، کانا دجال کہتے ہیں، اب کانے کا کیا مقصد ہے، ایک آنکھ ہے ایک آنکھ نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کے بہت سارے انٹرپریٹیشن، مگر ون آف دا موسٹ اپیلنگ انٹرپریٹیشن یہ کہ ایک آنکھ ہے اور ایک آنکھ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال اسے کہتے ہیں جو ہر مسئلے کی ایک سائڈ کو دیکھتا ہے دوسرے کو بھلا دیتا، یعنی وہ مومن جو یا تو آخرت کے لیے لگ گیا تو ایسا کہ دنیا کو بھول گئے، ہیں ایسے لوگ جو خالی مسلح پر بیٹھنے ہی کو عبادت سمجھتے ہیں اور اسلام سمجھتے ہیں، نہ بیوی کی مینٹیننس کا خیال، نہ بچوں کی تربیت کا خیال، نہ کمیونٹی کے ایپیئر سے ان کا کوئی تعلق، نہ ان کو اس سے کوئی کنسرن کہ اس وقت دنیا میں مسلمانوں پہ کیا گزر رہی ہے، بھائی ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز شب کے بھی ریگولر پڑھنے والے ہیں، دعائیں بھی ہماری زبان پہ ساری ہیں، سارے اعمال کر لیتے ہیں، بس مسلمانوں کا خون بہ رہا، صدام آیا اور صدام گیا، ساری دنیا کے اندر اسلام کا ایک مذاق اڑایا جا رہا، اسلام کو کس انداز سے بدلا جا رہا، ہمیں سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے گھر میں اسلام ہے نہیں، یہ بھی نہیں، ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں، دیٹس انف، اور یہی وہ لوگ کہ ہمیں ایک اسلام نے ایک ایسی دعا تیچ کی جس کا ایک ایک جملہ بہت امپورٹنٹ، لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ جملہ اسی کو لوگ سب سے زیادہ نیگلیکٹ کرتے ہیں، اب آپ میرا جملہ یاد کیجئے گا اور پھر خود آپ ایکسپیرینس کیجئے گا، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، یہ خالی ماہ مبارک رمضان کی دعا نہیں، یہ سارا سال پڑھنے کی دعا، اب اس کے اندر جیسے ہی دعا شروع ہوتی آپ پورے مجمع کو دیکھیے، اگر کسی گیدرنگ میں دعا پڑھی جا رہی ہر جملے پہ لوگ کہتے ہیں آمین، قبر والوں کی بات آئی آمین، جو لباس کو لباس ملے، قرضداروں کا قرضہ ادا ہو، اللہم شفا کل مریض کو تین تین بار ریپیٹ کرایا جاتا اپنی بیماری، اور جو اسلام کو بیماری لگ گئی اس کا کسی کو خیال نہیں، کیسے کہہ رہا ہوں کہ اس دعا میں قرضوں کی بات آتی ہے، الہی آمین، इसमें खाने कपड़े और पहनने की बात आती है इलाही आमीन, मरीजों की दुआ और शिफा की बात आती है इलाही आमीन, रुद्दा कुल्य गरीब फुक्का कुल्य असीर इलाही आमीन। अतीत दुआ में जाकर अल्लाहुम्मा असलिह कुल्ला फासिदिन मिन उमूरिल मुस्लिमीन, आए खुदा जो मुसलमानों के मैटर इस वक्त बिगड़ के रह गए, जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा, जो इस्लाम को चेंज किया जा रहा, आए खुदा मुसलमानों के मामलात को ठीक कर दे। मेजोरिटी तो मजमे की आमीन भी नहीं कहती, और जो कुछ लोग कहते हैं तो इतनी कमजोर और वीक उनकी आवाज होती है जैसे पता नहीं कितने महीनों का फाका बोला ही नहीं जा रहा है। दुआ के अंदर, दुआ के अंदर, बाकी हर जुमले पे चीख चीख के इलाही आमीन। और इसे इतना नेग्लेक्ट करना, ये बता रहा है कि हमारे यहाँ मोमिनों की एक कैटेगरी होगी जिसके लिए एनफ कि उनका इस्लाम महफूज है, वो नमाजें पढ़ रहे हैं, वो रोजे रख रहे हैं, वो अमाल कर रहे हैं, वो ज़ियारत आशूरा पढ़ रहे हैं, बाकी इस्लाम पे क्या गुजर रही है इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं। जबकि रसूल कहते हैं मनसबहा वला यहतम्मू बि उमूरिल मुस्लिमीन फलैसा बिमुस्लिम, जो आदमी सुबह को उठे और उसे इस बात की कोई परवाह न हो कि मुसलमानों पे क्या गुजर रही है, इस्लाम की क्या ट्रेजेडी है, मुस्लिम कहाँ कहाँ पे सफर कर रहे हैं, वह नहीं साहब मुस्लिम, वो सब कुछ हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। देखिए हम और आप किसी से कह दें तुम बेमान, हम और आप किसी से कह दें हम तुम्हें नहीं मानते मुसलमान, हम क्या, हमारा स्टेटस क्या, हमारे स्टेटमेंट की वैल्यू क्या। और अगर रसूलुल्लाह किसी से कह दें कि फलाई साहब मुस्लिम मैं तुम्हें मुसलमान नहीं मानता, और किससे कह रहे हैं, जो खुद नमाज पढ़ रहा, जो खुद इबादत कर रहा, जो हर साल हज पे जा रहा, जो हर साल शबे कदर के अमाल करता, जो हर साल पूरी रात जाता, जो शबे जुमा को दुआ को मेल करता, मगर कोई इसे इंटरेस्ट नहीं है कि इस्लाम पे क्या गुजर रही। ये दज्जाली मोमिन जो खाली आखिरत को देख रहा, और वो भी दज्जाली मोमिन है जिसे सब कुछ दुनिया में चाहिए, उसे बहुत टेंशन है कि उसका एक मकान होना चाहिए, मगर दुनिया में जन्नत के मकान की उसे कोई फिक्र नहीं, उसे बहुत ज्यादा टेंशन है कि कम्युनिटी में मैं बैठता हूँ मेरी औलाद अच्छी होनी चाहिए, वेल एजुकेटेड, अच्छा कैरियर, मगर इसकी कोई फिक्र परवाह नहीं है कि कयामत में उसकी औलाद किस कैटेगरी में जा रही है। ऐसा मोमिन जिसका सारा टारगेट फकत दुनिया है, ये भी दज्जाल। तो जो, और ये हदीस भी है कि जो दुनिया को आखिरत के लिए छोड़े या आखिरत को दुनिया के लिए छोड़े, फलैसा मिन्ना, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, वो रसूल ने कहा, ये इमाम ने फरमाया। तो कंप्लीट मोमिन किसे कहते हैं, जो दुनिया के लिए भी काम करे और आखिरत के लिए भी काम करे। मगर आज जो मुझे कहना था वो आखिरी जुमला जिसके लिए मैंने आपसे अपोलॉजी की 15 मिनट की एक ढाई तीन साल पहले की रिवायत पढ़ रहा हूँ, और वो ये है कि हदीस के अंदर ये कुरान की आयत, कुरान की आयत में दो बातें नहीं है, रब्बना आतिना फिर दुनिया भी है तो फिर आखिरत हसना भी है, और यहाँ पे आयत कंप्लीट नहीं हुई है, फुल स्टॉप नहीं लगा है, वहना अजाब अन्नार, और ऐ खुदा हमें जहन्नम के अजाब से भी बचा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज है मोमिनों के लिए, जो ये समझते हैं कि अहले बैत से हम मोहब्बत करते हैं तो अब हम पर कोई अजाब आ ही नहीं सकता, हम शराब पिए, हम जिना करें, हम डांसिंग पार्टी अटेंड करें, हम म्यूजिक सुने, हमारे घर में मिस गैदरिंग होती रहे, हम नमाजें कजा करते रहे, हम खुमस को हजम करते रहे, हम गीबतें करते रहे, हम तोहमतें लगाते रहे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कुरान के बारे में एक लफ्ज याद रखिएगा, कुरान की आयत में एक सिंगल वर्ड भी ऐसा नहीं जिसे आप डिलीट करें और फिर भी मैसेज कंप्लीट रहे। हर लफ्ज की एक अहमियत, अगर मोमिन के लिए इतना इनफ होता कि आए खुदा हमें दुनिया में भी अच्छा दे दे और आखिरत में भी, तो आयत कंप्लीट होती। आगे ये क्यों आया है वकीन आजाबन्ना, एक तरफ का हमें दुनिया भी अच्छा मिले, आखिरत में भी अच्छा मिले और जहन्नम के अजाब से भी बचाए जाए, इसका रीजन सुन लीजिए। एक बात 100% कन्फर्म है, इट्स पार्ट ऑफ अवर बिलीफ, पार्ट ऑफ अवर फेथ, कि हर वो आदमी जो आइम्मा ताहिरीन की इमामत और विलायत का कायल है वो जन्नत में जाएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हर वो आदमी जो विलायत और इमामत का कायल, मोहब्बत नहीं कह रहा हूं, मोहब्बत तो हिंदू भी करते, जो विलायत और इमामत को मानता वो जन्नत में जाएगा। लेकिन ये आयत एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज दे रही है, वो ये दे रही है कि जन्नत में जाने के दो रास्ते। अगर आप समझ रहे हैं जन्नत में जाने का एक रास्ता है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग। जन्नत में जाने के दो रास्ते, एक रास्ता है जो डायरेक्ट आपको जन्नत में ले जाता, और एक रास्ता है जो थ्रू जहन्नम होता है फिर जन्नत में जाता। अब मुझे ज्यादा तो एग्जाम्पल नहीं पता, एक ही एग्जाम्पल पता है, और जब भी ये एग्जाम्पल मैं देता हूं लेस्टर के मोमिनीन से मैं माफी मांग लेता हूं, क्योंकि मुझे और ज्यादा यहां इंग्लैंड के बारे में नहीं मालूम। तो लंदन से बर्मिंघम मुझे जाना होता तो कभी कोई मोमिन M40 से लेके जाता और कभी कोई मोमिन M1 से लेके जाता, दोनों रास्ते मुझे बर्मिंघम पहुंचाते। M40 वो है कि लंदन से निकले और सीधे बर्मिंघम पहुंचे, M1 वो है कि लंदन से बर्मिंघम जाते हैं लेकिन थ्रू लेस्टर होकर, रास्ते में लेस्टर आता है फिर वहां से M6 होकर हम बर्मिंघम पहुंचते। ये भी बर्मिंघम का रास्ता है, वो भी बर्मिंघम का रास्ता, एक रास्ता डायरेक्ट है, एक रास्ता लेस्टर से होकर गुजरता। अब लेस्टर के मोमिनीन से मैं हमेशा माफी क्यों मांगता हूं, वो इसलिए मांगता हूं कि मैं मिसाल देता हूं जन्नत के रास्तों की। जन्नत के दो रास्ते, एक डायरेक्ट जन्नत में ले जाता है M40 की तरह, और एक जहन्नम में से होके जन्नत में ले जाता है M1 और M6 की तरह। बड़ी मोहब्बत करने वाली कम्युनिटी है लेस्टर की, मैं पहली मरतबा इंग्लैंड आया ही उनकी दावत में था, लेकिन महाराज और मुझे ज्यादा रास्ते वास्ते नहीं मालूम, इसलिए मैं मिसाल में लेस्टर का नाम लेता हूं। दोनों पहुंचाते आपको एक ही डेस्टिनेशन पर, और वो है बर्मिंघम। लेकिन एक डायरेक्ट रास्ता है, इनडायरेक्ट रास्ता है। कुरान कह रहा कि देखो जन्नत में जाने के दो रास्ते, एक डायरेक्ट तुम्हें जन्नत में ले जाएगा और एक जहन्नम में से होकर फिर तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। हर 12 इमामी और अस्नाशरी शिया को जाना जन्नत में है, लेकिन ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है कि वो ये चेक करे कि मैं कौन से रास्ते पे चल रहा हूँ जो डायरेक्ट जन्नत में ले जाने वाला है, या कहीं उस रास्ते पे तो नहीं जा रहा हूँ जो जन्नत में तो ले जाएगा लेकिन थ्रू जहन्नम, पहले जहन्नम में ठहरना फिर आगे जन्नत में जाओगे। ऐसा भी एक रास्ता है जो शराबी मोमिन के लिए है, ऐसा भी एक रास्ता है जो मिक्स गैदरिंग के शौकीन मोमिन के लिए है, ऐसा भी एक रास्ता है जो गीबर तो तोहमत लगाने वाले के लिए है। ये मोमिन है इसलिए जाएगा जन्नत में, लेकिन ऐसे बड़े बड़े गुनाह कर रहा है कि ये उस रास्ते से जन्नत में जा रहा है जिसमें बीच में जहन्नम आता है, और इसके लिए वो छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूं। वैसे मुझे ये शबे जुमा पढ़ना था, मैंने कहा था ना थोड़ा अजाब और कब्र का तस्करा शबे जुमा आएगा। बाद में कुछ मोमिनीन एक दूसरे से बातें करने लगे तो भाई शबे जुमा हम नहीं आएंगे, तो मैंने देखा कि अभी से लोगों की प्लानिंग ऐसी हो रही है तो शबे जुमा मैं ये नहीं पढ़ूंगा, किसी और मजलिस में पढ़ूंगा, कुछ आज कुछ किसी और दिन। तो अब खुलासा क्या, ईरान के या हिन्दुस्तान के शहजादे की स्टोरी, और वैसे तो बहुत डिटेल में, मुझे सिर्फ ये पॉइंट समझाना कि कुरान कह रहा है और हज के थ्रू कह रहा कि दुनिया में भी अच्छाई मांगो आखिरत में भी अच्छाई मांगो, लेकिन दैट्स नॉट एनफ, साथ में ये भी चेक करो कि ऐसा ना हो कि दुनिया और आखिरत की अच्छाई तो मिल रही हो लेकिन थ्रू जहन्नम। हिंदुस्तान का एक शहजादा, वो जमाना है कि जब ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में पेनेट्रेट कर रही, सुना कि वहां के शहजादे हिजरत करके गुर्बत के आलम में इधर उधर स्कैटर्ड हो रहे। एक आदमी मक्के आ गए, पुराना जमाना वीजा पासपोर्ट इमिग्रेशन ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मक्के आ गया। मक्के में इसका स्टे, शहजादे जो पुराने जमाने के प्रिंस हैं प्रिंसेस हैं और शायद आजकल के भी अरब दुनिया के, वो ना पढ़ते लिखते हैं ना उनके पास कोई हुनर होता है ना कोई जॉब कर सकते हैं, उनका सारा एसेट आजकल तो सुपर बैंक के वो बैंक होते हैं लेकिन पहले जमाने में तो ये भी नहीं था। तो वो जो प्रीशियस स्टोन होते हैं कीमती पत्थर, इसमें एक एक पत्थर की वैल्यू मसलन $100,000 या $1,000,000, कम जगह में ज्यादा चीजें आ जाए, इतना बड़ा कैश हैंडल करना तो मुश्किल है। प्रीशियस स्टोन है, छोटी सी पाउच आमतौर पर बेल्ट पे लगी रहती, और इसके तो बहुत सारे इमाम के जमाने के वाकयात कि एक आदमी उसकी सारी जिंदगी की सेविंग बैंक तो नहीं, अपने साथ पाउच में वो रखता, किसी मुर्दे को कब्र में उतारने गया, बाहर आया कब्र बंद हो गई, पता चला उसकी पाउच गिर गई। अब वो इमाम के पास जाता है, मौला मैं क्या करूं, कब्र खोदना हराम है, इमाम ने इसके लिए परमिशन दी। बहुत सारी स्टोरीज, लेकिन एक हाथ इसमें आएगी भी क्योंकि उसमें आजाद का जिक्र है, लेकिन आज नहीं और शब जुमा भी नहीं किसी और दिन। अच्छा अब यह है कि ये हिंदुस्तानी शहजादा इसकी हाथ ही जिंदगी सारी लाइफ सब सेविंग जो है, सेविंग भी क्या है कि हमारे और आपके जो रकम जो पैसे होते हैं वो उनके पास जमा है वो उसके पास, और इसे जरूरी काम से मक्के से बाहर जाना पड़ा, मामला बहुत इंपॉर्टेंट। और ये वो जमाना है कि मक्के के बाहर अरब के डाकू ऐसे थे कि पहले लोग इसलिए मदीने भी नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, मशहूर थे जमाने कि हज पर जाने वाले पर डाका पड़ना या उसको लूट लेना तो लाजिम ही लाजिम, इसीलिए हज की शरायत में से एक शर्त यह है कि रास्ता सेफ हो। बहरहाल इन शॉप यह है, देखिए भाई रॉबरी आजकल भी होती है लेकिन जरा ऑर्गेनाइज वे में गवर्नमेंट के थ्रू, उस जमाने में यह था कि नहीं वो डाकू थे हाँ डिसऑर्गेनाइज टाइप के, लेकिन अपने साथ कोई कीमती चीज लेके आप जाए 100% आपके अटैक होगा। अब ये इंडियन प्रिंस इसे मक्के से बाहर भी जाना, और ये जो उसके पास पाउच में इसकी सारी जिंदगी की सेविंग बल्कि इसकी पूरी जिंदगी आपकी लाइफ डिपेंड इसी पैसे पे करती, इसे साथ लेके जाए तो 100% लूट लिया जाए, यहां पे छोड़ के जाए तो किसी को नहीं जानता, बिल्कुल एक नया आदमी है, किस पर भरोसा करे। उस वक्त मक्के में ईरान का रहने वाला एक मोमिन शेख अब्दुल ताहिर खुरासानी बड़ा फेमस था, ये खुरासान का था, इस्लाम में एक अहम इबादत ये भी कि आदमी खाने खुदा के करीब रहने के लिए माइग्रेशन करके मक्का आ जाए, ये भी एक इबादत जो आजकल इम्पॉसिबल हो गई है वीजे और पासपोर्ट वगैरह के प्रॉब्लम से, पहले जमाने में ये वन ऑफ द मोस्ट सवाब वाली इबादत थी। ये ऐसा ही नेक मोमिन था और रियल नेक था, चीटर नहीं था, हाइपोक्रेट नहीं था, मुनाफिक नहीं था, सिंसियर मोमिन, नमाज भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, हज भी करता है, तवाफ भी करता है, अमाल भी करता, मगर दज्जाल वाला मोमिन नहीं। उसे पता है कि ये भी एक मोमिन की ड्यूटी है कि दूसरे मोमिनीन की हेल्प करे, जब बैंक नहीं है तो ये हेल्प का पार्ट था कि लोगों की अमानत रखो और उन्हें वापस करो, वो बेचारे कहां जाएंगे। देखिए होता यह है कि जो ज्यादा नेक मोमिन होता है ना वो कहता भाई मैं इस मामला में इंटरफेयर नहीं करता हूं, मैं क्यों किसी झगड़े में पड़ू, बाद में बिलावजह प्रॉब्लम होंगे। चीटर लोग तैयार होते, लाइए अपने पैसे हमारे पास रखवाइए, हम आपको रिटर्न करेंगे। और जो नेक मोमिन है ना वो अपनी सिंसियरिटी या पाइटी की वजह से इन चीजों में इंटरफेयर ही नहीं करते, ये इस्लाम ही नहीं, ये अगेंस्ट इस्लाम, ये पायस लोगों की पहली ड्यूटी कि हर उस मसले में इंटरफेयर करे जिसकी वजह से कम्युनिटी में फितना पैदा हो सकता है, टॉपिक बहुत फैल रहा है। इन शॉर्ट ये कि शेख अब्दुल ताहिर को हर आदमी प्रेस करता था, मक्के में जिससे कहो लोग कहते थे इंतहाई रिलीजियस, नमाजी भी है, रोजेदार भी है और लोगों की हेल्प भी करता, अमानत रखता। पहले जमाने में इंडिया में पाकिस्तान में इवन ईस्ट अफ्रीका ऐसे लोग थे जिनपे लोग ट्रस्ट करते थे और वो ट्रस्ट पर पूरा उतरते थे। अब इसने सोचा इंडियन प्रिंस ने कि मैं तो मक्के में किसी को नहीं जानता, अपने साथ ये पाउच लेके जाऊं 100% डाकू लूट लेंगे, बारह यहां रिस्क लिया जा सकता है, यहां 50-50 चांस। चुना के उनके पास गया, ये अमानत रखवाई और चला गया। अमानत वो चीज, मेरा चौथा इमाम कहता है अन्ना कातिला अभी, अगर मेरे बाबा का कातिल मेरे पास वो तलवार अमानत रखवाए जो करबला में ले गया था तब भी मैं ये तलवार उसको वापस करूंगा क्योंकि अमानत। या भाई भाई का हक किस तरह खा जाता, यहाँ पे दोस्त दोस्त बिजनेस पार्टनर बिजनेस पार्टनर कितने ऐसे केसेस, लेकिन ये बात तो किसी और की आएगी, आज मुझे टाइम के अंदर वाकया कंप्लीट करना मैसेज देकर। सर इसने कहा कि चलो ये 50% रिस्क साथ में ले जाना, 100% कंफर्म है कि मेरा माल लूट लिया जाएगा, ये अमानत देके गया। जिस काम के लिए गया, जैसे ही वो काम कम्प्लीट हुआ मक्के में आया, घर बाद में गया, खाने काबा बाद में गया, शेख अब्दुल ताहिर के घर में पहले गया, दिल मुसलसल उधर ही लगा। लेकिन जब वहां गया एक ऐसी न्यूज इसका वेट कर रही थी कि ना शेख अब्दुल ताहिर को कंडेम कर सकता ना ही सब्र आ सकता, पता चला मेरी एब्सेंस में शेख अब्दुल ताहिर की डेथ हो गई, इसने कोई चीटिंग नहीं की, फ्रॉड नहीं किया, मौत आ गई। इसने उसके वारिसों से कहा, वारिसों ने वो बॉक्स ला के रख दिया जिसमें डिफरेंट पाउचेस थी, क्या इसमें पहचानी आपकी अमानत, क्या उसमें नहीं थी अमानत। शेख अब्दुल ताहिर इस बारे में इतने कौशल थे कि अपनी औलाद को भी नहीं बताया था कि ये इतनी एक्सपेंसिव अमानत है कि कहीं औलाद का ईमान न बिगड़ जाए। मगर वो जो एहतियात करने गया तो इंडियन शहजादे की तो सारी जिंदगी स्पॉइल हो गई। अब उन्हें बुरा भी नहीं कह सकता है, मौत आई और सब्र भी नहीं आ सकता अपनी जिंदगी कैसे गुजारे। आखिर इसके मन में एक बात आई, अपने हिसाब से किसी मर्जी से नहीं पूछा, इसने सुना था कि मरने के बाद नेक लोग वादियो सलाम में भेजे जाते हैं, सोल है जो रूह है और गुनाहगार वादियो बरहूत में, और इट इज फेमस कि वादियो सलाम नजफ में है, वादियो बरहूत यमन में। अब शेख अब्दुल ताहिर इतना पायस आदमी, इसने कहा वो तो मरने के बाद वादियो सलाम में गया होगा, चलो मैं उससे जाके मुलाकात करता हूँ। चुना के ये मक्के से नजफ गए, सुबह को नमाज पढ़ते हैं मौला के हरम में, जियारत पढ़ते हैं जरी के सामने, और फिर सारा दिन रात तक कब्रिस्तान में रहते हैं, वादियो सलाम का कब्रिस्तान जो नजफ है मौला के हरम के बाहर, और रात को वापस आते हैं। एक वीक, दो वीक, तीन वीक, शेख अब्दुल ताहिर से मुलाकात नहीं हुई, एटलीस्ट उसकी रूह से मुलाकात नहीं हुई। एक दिन नजफ के एक आदमी ने इसको रोका, नमाज फजर के बाद ये जाना चाहता, रोक लिया, कहा कि भाई नजफ पे लोग जो बाहर से आते हैं दो कैटेगरीज के होते हैं, या जाहिर आते हैं जियारत वाले, वो सारा दिन जरी के पास बैठे होते हैं, या तालिबे में स्टूडेंट आते हैं मर्जी बनने के लिए, वो जाते हैं मुख्तलिफ रिलीजियस स्कूल में तालीम हासिल करते हैं, न आप वहां जाते हैं न आप यहां बैठते हैं, कब्रिस्तान चले जाते हैं। आपकी कौन सी कैटेगरीज है? आपकी कैटेगरी तो न स्टूडेंट है न जाहिर का, मेरी कैटेगरी यह है कि मेरी अमानत शेख अब्दुल ताहिर के पास है, मैं उसको सर्च कर रहा हूं। तीन वीक हो गए, चार वीक हो गए, उसने कहा लेकिन ये कैसे पता चला कि वो यहां होंगे? ये इंडियन प्रिंस कहने लगा कि बिल्कुल लॉजिकल बात, दुनिया में सैकड़ों हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ टाउन है, मरने के बाद तो दो ही टाउन है, या वादी सलाम या वादी बरूद, वादी बरूद में गुनाहगार जाते हैं। शेख अब्दुल ताहिर तो इतना पायस आदमी था, वो तो यकीनन वादी सलाम में आया होगा। कहा मगर ये किसने कंफर्म किया कि वादी सलाम में आया? हो सकता है वादी बरूद में हो। बस एक बार इंडियन प्रिंस कह लेगा आप क्यों इंसल्ट करते हैं, इतना नेक आदमी, अल्लाह जालिम नहीं आदिल है, कैसे पॉसिबल है कि उसने इतनी इबादत के बाद भी वादी बरूद भेजे? इसने कहा देखो ये डिस्कशन छोड़ो, तुमने एक महीने यहां ट्राई कर ली ना, एक दफा वहां जाकर ट्राई करो, ट्राई करने में क्या नुकसान, नहीं मेरा वापिस आ जाना। ये बात मगज में आ गई, वादी बरूद में गया, कैसे गया किस तरह गया ये मैं शॉर्ट करता हूँ। वहां पहुंचा, वहां पहुंचने के बाद एक डेजर्ट है और डेजर्ट के अंदर एक बहुत ही डर वाली जगह, वहां बैठ के ये आवाज देने लगा ऐना अब्दुल ताहिर, ऐना अब्दुल ताहिर। सामने से एक आदमी आया लेकिन सर से पैर तक पूरा आग में जला हुआ, स्किन जल चुकी है, चर्बी पिघल के बाहर आ चुकी है, आग में जो जल जाए ना उसकी शक्ल उसकी बॉडी देखने में इतना डर लगता कि माँ बेटे को नहीं देख पाती। इसने घबरा के आंखें बंद कर ली और आवाज देने लगा अब्दुल ताहिर कहाँ? वो करीब आए, अलका क्या बात है, क्यों अब्दुल ताहिर को पुकार रहे? शहजादा कहने लगा तुम वापस जाओ, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, मैं अब्दुल ताहिर को पुकार रहा हूँ। कहा आई एम अब्दुल ताहिर, मैं ही तो अब्दुल ताहिर हूँ जिसे पुकार रहे हो। घबरा गया, वो ईरान का रहने वाला, सुर्खो सफेद रंग, इतना खूबसूरत, फिर इबादत और तकवे का अपना एक हुस्न होता है, तुम तो इतने काले कलूटे जले हुए चर्बी पिघली हुई। कहा लेकिन मैं अब्दुल ताहिर, तुम यहां कैसे आ गए और ऐसा सख्त अजाब? कहा कि मरने के बाद मुझे अल्लाह की तरफ से मैसेज मिला कि मेरी सारी नेकियों का सवाब जमा, और वो कयामत के दिन जब रिवार्ड मुझे मिलेगा तो मैं अंबिया के साथ कयामत के मैदान में उठाया जाऊंगा, मेरा चेहरा जो फरिश्तों ने कहा जस्ट लाइक फुल मून कयामत के मैदान में चमकेगा, मगर तीन गुना मेरे ऐसे हैं जिसमें अल्लाह किसी को माफ नहीं करता, उसकी मुझे पनिशमेंट मिल रही। और शेख अब्दुल ताहिर कह रहे हैं जो फरिश्तों ने ये एग्जाम्पल मुझे दी है कि मेरी मिसाल उस परिंदे की तरह है, वो बर्ड जिसमें फ्लाइंग की पावर है, उसके विंग्स भी है, मगर एक छोटा सा पत्थर आप उसके रस्सी से बांधे, जब तक कि ये रस्सी टूटे नहीं और ये पत्थर गिरे नहीं, वो उड़ नहीं सकता। कहा मेरी सारी नेकियां लेकिन ये तीन गुना उस पत्थर की तरह है जो मेरे विंग पर या पर पे बंधे हुए हैं, जो मुझे जन्नत में फ्लाई करने से रोक रहे, पहले इनकी पनिशमेंट। कहा वो तीन गुना क्या? तीन गुना।
और आप देखे कैटेगरी करके कि क्या आज मोमिनीन की मेजोरिटी यही तीन गुना नहीं कर रही। तो आप पहला गुना ये कि मुझसे कहा गया कि तुम्हें इबादत का बहुत शौक था, खाना काबा तुम्हें बहुत पसंद था, इसलिए अपना शहर, अपना वतन, अपना मुल्क, अपना देश छोड़ के यहाँ आ गए, मगर भूल गए कि तुम्हारे पेरेंट्स बूढ़े थे, उन्हें तुम्हारी जरूरत थी, तुमने अपना ख्याल किया, उनका ख्याल ना किया। मैंने घबरा के कहा लेकिन मैं उनकी मेंटेनेंस के लिए मंथली वहां पैसे भिजवाता था। फरिश्तों ने कहा हर आदमी पैसे लेके दूसरे को छोड़ सकता है, लेकिन वालिदैन वो हैं जिन्हें पैसा नहीं चाहिए, औलाद चाहिए। एक अजीब जुमला आया था, जहां मैं जाता हूं उसके बैठे जुमला सुनता मौलाना, दुनिया ग्लोबल विलेज। भाई क्या मतलब ग्लोबल विलेज का? सब मीडिया इतनी तरक्की कर गया, ये इंटरनेट है और फिर ये मोबाइल है, कि आज जैसे छोटे से विलेज में होता है ना कि हर घर वाले को पूरे विलेज के बारे में पता होता है, कहाँ दावत है, कहाँ मेहमान आया, कहाँ पे शादी हुई, कहाँ पे गमी हुई, किसकी बीवी प्रेग्नेंट है, कहाँ सास बहू का झगड़ा हुआ, कहाँ पे शोहर ने आज बीवी की पिटाई की। विलेज में कोई चीज आप छुपा नहीं सकते। तो बात दुनिया ग्लोबल विलेज है, आज नॉर्थ पोल की चीज विद इन सेकेंड सारी दुनिया को पता चल जाएगी। और हम देखते भी हैं, वो कैलिफोर्निया में एक बिल्ली दरख्त पे चढ़ के फंस गई थी, तीन दिन तक सारी दुनिया का मीडिया उस बिल्ली को दिखा रहा है जो कैलिफोर्निया के जंगल में। अभी लास्ट ईयर जापान के भी ऊपर समंदर में कुछ वेल मछली आके फंस गई थी, सारा मीडिया दिखा रहा है कि उनपे क्या गुजर रही है। ग्लोबल विलेज, पहले मोम्बासा की खबर नैरोबी आने में दो दिन लग जाते, और आज नॉर्थ पोल की खबर विद इन सेकेंड आपको मिल जाएगी। ग्लोबल विलेज, बहुत एक दूसरे के करीब आ गई है दुनिया, जिससे हमको प्रॉब्लम भी होता, हमें भी होता है। मौलाना ये मजलिस तो हमने आपकी सुन रखी, फिर मैं तो 10 साल बाद इस टाइम मोर में पहला असरा पढ़ रहा हूँ, तो इंटरनेट पे सुन ली थी। मुझे हुसैन इस्लामिक सेंटर की इंतजामिया ने बताया कि इंटरनेट पे इस दफा इतने लोग मजलिस सुन रहे हैं कि यहाँ की हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड, मगर इतने ही लोग कंप्लेंट भी कर रहे हैं मौलाना ये सारी बातें सुनी सुनी लग रही, क्यों ग्लोबल मिले। मैं पाकिस्तान के किसी टाउन में भी मजलिस पढ़ के आ जाऊं तो लोग सुन लेते हैं ग्लोबल मिले, लेकिन सो क्लोज यट सो अपार, इस बार इतना करीब और इतना दूर। ग्लोबल विलेज, नॉर्थ पोल के पेंगुइन पे क्या गुजर रही है, साउथ पोल की वेल मछली पे क्या गुजर रही है, ये आपके छोटे बच्चे को भी मालूम है, लेकिन हमारे पेरेंट्स की क्या हालत है ये औलाद तक को पता नहीं। भाई पे क्या गुजर रही है ये सगे भाई को नहीं मालूम, ब्लड रिलेटिव किस हालत में है ये ब्लड रिलेटिव को नहीं पता। नॉर्थ पोल की वेल मछली की हालत हमको पता, साउथ पोल की पेंगुइन प्रेग्नेंट हो गई है, उसके यहाँ डिलीवरी होने वाली है, ये हमको मालूम है। और हमारा बूढ़ा बाप, हमारी बूढ़ी माँ, सिर्फ थोड़ी सी अपनी लग्जरी के लिए, सिर्फ थोड़े से अपने आराम के लिए इस तरह से उनको भुला दिया। सो क्लोज यट सो फार, ये करीब आई है दुनिया के दूर हुई है, ये ग्लोबल विलेज बनी है या एक एक टाउन दूसरे टाउन से इतना फासला है जितना एक स्टार और दूसरे स्टार का फासला होता है। क्या फायदा उस ग्लोबल विलेज का कि दुनिया की हर खबर आपको है, अपने पेरेंट्स की खबर आपको नहीं। और ये वो गुनाह है जिसमें अल्लाह किसी को माफ नहीं करेगा। आप जो ताहिर खुरासानी कहते हैं, मेरा पहला गुनाह ये, सोचिएगा कभी। और अपने बच्चों को भी ये लेसन दीजिएगा, जबान से नहीं, अपने एक्शन के जरिए से बताइए कि वाकई पेरेंट्स कितनी बड़ी नेमत है, लेकिन आपके एक्शन उनको बताए। बस ये बात आज बहुत लंबी हो रही है, इसलिए शॉर्ट करता हूं। दूसरी बात, कहा कि एक बात, अगर कि मैं बहुत कॉशस हूं अपनी जबान के बारे में, शेख अब्दुल ताहिर कहते हैं, लेकिन एक बात, किसी जगह सिटिंग हो रही थी एक आलिम की, मैंने इंसल्ट कर दी। अल्लाह हर गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन किसी पायस और सिंसियर आलिम की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे यहां तो कोई गैदरिंग, इवन नमाज जमात भी उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होती है जब तक कि किसी आलिम की गीबत न की जाए। और नंबर तीन, एक बार कुछ खुम्स मनी मेरे पास आई थी जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट की, लेकिन ऐसे आदमी को चली गई जो डिजर्व नहीं कर रहा था। यानी अगर आपने उसको दिया, दैट मीन्स एक गरीब सैयद का हक आपने मारा। अल्लाह हर गुनाह माफ कर देगा, लेकिन किसी गरीब मोमिन को आप हक से महरूम करेंगे, ये गुनाह माफ नहीं होगा।
अब ये बता तेरा प्रॉब्लम क्या? क्या मेरा प्रॉब्लम हो अमानत? कहा कि हाँ, वो मैंने किसी को नहीं बताया, मेरे घर में जा, मेरे बैकयार्ड में जमीन खोद खुला जगह के वो अमानत के बाद में भेज गई। लेकिन ये शेख अब्दुल काहिर खुरासानी ये मैसेज भी दे रहे कि हर गुनाह माफ हो सकता है लेकिन पेरेंट्स को निगलेक्ट करना आम आलिम की तौहीन। हमारे यहाँ तो मर्जी तक को लोग नहीं छोड़ते, सिर्फ इसलिए कि ईद की सवैयां मंडे को खाएं कि ट्यूजडे को खाएं। इतने अजीम मर्जी के खिलाफ लोग जबान खोलते और खुम उस्मानी का इतना वेस्टेज हो रहा कि ईमान के माल को अपने माल से भी ज्यादा इजी समझा जा रहा। और ये भी पता चल गया कि शेख अब्दुल ताहिर एक मोमिन हकीकी है, जन्नत में जाएगा, लेकिन रास्ता उसने M6 और M1 वाला इख्तियार किया है जो जहन्नम से होकर उसको जन्नत में ले जाएगा। तो मोमिन को खाली इस पे सेटिस्फाई नहीं होना है, वो जन्नती है, मुसलसल चेक करे कि कौन सा रास्ता। और इसी चेकिंग के लिए नमाज, मैं अपने टॉपिक से नहीं हटाऊं, नमाज। नमाज में आप सबसे ज्यादा क्या कहते हैं? ये तो अल्लाह अकबर है, दिन अस्तेरातल मुस्तकी, दिन और रात में कितनी बार अगर आप खाली वाजिब वाजिब नमाज पढ़ते हैं तब स्टैंड टाइम कहते हैं अरे खुदा मुझे सीधे रास्ते पे रखना। सीधे रास्ते का मतलब है M40, जो डायरेक्ट जन्नत पे ले जाने वाला है, वो जहन्नम वाला रास्ता नहीं। हर वक्त क्यों हमसे ये कहा जाता, क्यों हमसे ये कहा जाता दुआ मांगो? हर नमाज में ये कहो चाहे खुदा, यानी नमाज के मुताबिक आप अल्लाह से बात करो, अपनी बातें बाद में कहेंगे। दुआएं कब मांगनी? कुनूत में ना, सिजदे में ना, और इहदिना सिरातल मुस्तकीम तो तकबीरतुल इहराम के फौरन बाद। पहले अल्लाह से ये दुआ करो कि अय खुदा मेरा रास्ता जन्नत का डायरेक्ट रहे। हर वक्त चेक करते रहो और अगर कहीं भी डाइवर्जन देखो तो अभी टाइम बहुत नहीं गुजरा, अभी तुम जिंदा हो, अभी तौबा का दरवाजा खुला। जब हुर जैसे गुनाहगार की तौबा कबूल हो सकती है, ये रोजाना 10 times चेक करो अपने आप को। और चेक इसलिए करो कि अगर जरा सा डाइवर्जन पाओ तो हुर की सीरत पे अमल करते हुए तौबा करो। हुर जैसा मैंने मजलिस के शुरू में फजाइल में एग्जाम्पल दी, मसाहिब में भी वैसी एग्जाम्पल। जनाबे खदीजा ताहिरा अगर दुनिया में रसूल की बीवी और जन्नत में रसूल की बीवी बनी, इट्स नॉट सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग आसिया है कि दुनिया में इतने बड़े दुश्मन खुदा की बीवी और जन्नत में इतने हबीब खुदा की भी। अगर हबीब इब्न मजाहिर और मुस्लिम इब्न असजा का इतना स्टेटस हमें हाई करबला में नजर आया, इट्स नॉट सरप्राइजिंग। वो पहले भी अहले बैत के मानने वाले थे और आखिर में भी सरप्राइजिंग या खुर्फ। एक रात का डिफरेंस है। अगर 9 मुहर्रम की वो जंग जो उमर साद ने स्टार्ट कर दी थी, जनाब अब्बास के थ्रू इमाम हुसैन ने एक रात की मोहलत ली थी, फरसिया जनाब अब्बास के हाल का था, मैसेज भी जनाब अब्बास का है लेकिन कल आएगा, एक रात की मोहलत ली थी। अगर वो एक रात की मोहलत ना ली जाती है, 9th मुहर्रम का जिहाद एज इट इज होता तो नऊज़ुबिल्लाह खुर लअनल्लाह उम्मतन क़तलतका व लअनल्लाह उम्मतन ज़लमतका में शामिल। अगर 9 मुहर्रम को याद हो जाता हुर यजीद के कैंप में, सिर्फ एक रात गुजरी, 28 मुहर्रम को हुर उस कैंप में आ गया कि हम और आप हुर को प्रेज नहीं करते हैं। छठे इमाम हुर के रोजे पे जाते कहते थे अभी व उम्मी, मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान। एक रात में हुर को कहां से कहां पहुंचा दी, मगर बात वही थी कि सिंसियर कॉमर। वैसे अगर आप यूं देखें तो करबला के वाकये के बैकग्राउंड में जितनी भी पर्सनैलिटीज हो, लेकिन जो डायरेक्ट करबला का वाकया स्टार्ट होता, और शॉर्ट कर दो, सबसे पहले जिसने सैदानियों को रुलाया, जिसकी वजह से जैनब की आंखों में आंसू आए, वो हुर था। क्योंकि जब ये काफिला मक्के से कूफा चला जा रहा था तो एक नॉर्मल किस्म का इनका जर्नी था, हुर था जो रास्ते में आता, और आने के बाद हुसैन के घोड़े की लगाम पे हाथ रखता और कहता फर्जंद रसूल यजीद का ऑर्डर है, मैं आपको कूफा नहीं जाने दूंगा, आपको अपने काफिले का डायरेक्शन चेंज करना। जैनब कुबरा को उसका बाबा बता चुका था, जब कूफे का रास्ता रोका जाएगा समझ लेना कि अहले बैत के मसाइल स्टार्ट होंगे। तो इधर उसने रास्ता रोका और काफिले की डायरेक्शन चेंज हुई। उधर ज़ैनब कुबरा और सैदानियों के रोने की आवाज बुलंद हुई। करबला में हुसैन को लेके कौन आया?
अभी इब्ने ज़ियाद नहीं है, अभी यजीद नहीं है,
अभी शिमर नहीं है,
खाली हो रहे।
जब हुसैन के खेमे दरिया के किनारे लगाए जा रहे थे, किसने रिजिस्ट किया? कहा कि ये खेमे पानी के करीब नहीं लगेंगे।
ये होर था,
अभी दूसरे जर्नेल नहीं आए हैं। कौन था जिसने इब्ने ज़ियाद को खत लिखा?
हुसैन हमारे काबू में आ गए, जल्दी से फौजों भेजो।
किसके खत की वजह से हमारे साथ आया? किसके खत की वजह से हरमुला आया? किसके खत की वजह से शिमर आया?
ये होर।
7 मुहर्रम को जब बच्चों और अहले बैत पर पानी बंद किया गया, उस मीटिंग में होर शामिल है और पूरी तरह से उनके साथ राजी है।
होर ने रिजिस्ट नहीं किया,
होर ने नो में वोट नहीं डाला। जब 9 मुहर्रम को हमारे साथ ने जंग शुरू कर दी, और उस वक्त भी इब्ने साथ के साथ, करबला का इतना बड़ा क्रिमिनल और ऑफेंसिव और मुजरिम। लेकिन 10 मुहर्रम को जब एक बार होर ऐसा रेवोल्यूशन आया और सच्ची तौबा करके आका के पास आया, तो किस तरह उसको वेलकम किया गया? रिवायतों में यह है कि 10th of Muharram उमर साद की आर्मी अपनी जगह तैयार है, हुसैन की फौज अपनी जगह तैयार है। वहां 30,000 का लश्कर है, यहां 72 की छोटी सी आर्मी है। एक बार होर अपने दोस्त से कहता है कि अब मुझे रियलाइज हो रहा है मैंने बड़ी गलती की है, अगर मैं चला जाऊं आका के पास तो क्या वो मुझे माफ कर देंगे? होर का दोस्त कहता है ये गलती ना करना, इधर से भी जाओगे उधर से भी जाओगे, तुमने इतना बड़ा गुनाह किया कि कितना ही लीनियंट और मेहरबान क्यों ना हो, तुम्हारे गुनाह को माफ नहीं कर सकता। मगर होर कहता है तुम रोकते रहो, मुझे भरोसा है रहमतुल लिल आलमीन के अमरनवासे के पास जा रहा हूँ, अली इब्ने अबी तालिब के बेटे के पास जा रहा हूँ, कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो मेरा गुनाह माफ होगा। ये कह के होर चला और इधर लश्कर यजीद से निकला, हुसैन की आर्मी के करीब पहुंचा। हुसैन की सारी आर्मी हुर को पहचानती, सबको बताया ये कितना बड़ा दुश्मन है। तो जैसे ही हुर को आते देखा, हबीब इब्ने मुजाहिर ने आवाज दी, असाबे इमाम शहजादों को अपने घेरे में ले लो, ऐसा ना हो कि हम जिंदा रहें और शहजादों पे कोई अटैक हो जाए। और उधर अब्बास ने आवाज दी, आए बनी हाशिम के जवानों आका को अपने घेरे में ले लो, ऐसा ना हो कि हम जिंदा रहें और आका पे ये हमला कर दे। पर इधर बनी हाशिम के नौजवान हुसैन को घेरे में लेते हैं, उधर हबीब इब्न मुजाहिर के सिपाही जवाना ने बनी हाशिम को घेरे में लेते हैं। अजादारों एक जुमला कह दूं, आशूर की सुबह को कितना ख्याल है इनको एक दूसरे का, मगर आए हबीब इब्न मुजाहिर पर आशूर की से पहर को आना, यही जवाना ने बनी हाशिम है, कासिम के जिस्म के टुकड़े हैं, अकबर के कलेजे में बरछी है, अब्बास के कटे बाजू है, अजगर का छिदा हुआ गला है। और आए मेरे आका अब्बास, हाथ जोड़कर कहता हूँ, अभी आका हुसैन का कितना ख्याल है, लेकिन वो वक्त भी आने वाला है, आका नाम ले लेकर एक एक को पुकारेंगे और कहेंगे हल मिन नासिरिन यंसुरना, अरे कोई उस वक्त ना होगा हुसैन को बचाने वाला। इधर जवाना ने बनी हाशिम तैयार हुए, आका को घेरे में लिया, उधर हबीब इब्ने मुजाहिर के सिपाही तैयार हुए, मगर हुर एक डिस्टेंस में रुक गया, घोड़े से उतरा, जेब से रूमाल निकाला, हाथों को उससे बांधा, आवाज दी, अरे रहमतुल्लिल आलमीन के बेटे, दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार क्या तेरी बारगाह में आ सकता है? हुसैन ने कहा अब्बास अपने जवानों को रोको, हबीब अपने सिपाहियों को रोको, मेरा मेहमान आया है, मैं अपने मेहमान का इस्तकबाल करने जा रहा हूँ। हुसैन आगे बढ़े, हुर ने इतना इंतजार भी न किया कि हुसैन घोड़े से उतरते, हुसैन के पैरों पे सर रख दिया, एक ही जुमला कहता है, अख्ता तो यबना रसूलल्लाह, अरे रसूल के बेटे मैंने बड़ी खता की, तुझे तेरी माँ फातिमा जहरा का वास्ता, मेरी खता को माफ कर दे। तो इतना सुनना था, माँ का नाम सुनना था, हुसैन घोड़े से उतारा, हुर को गले से लगाया, अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, अरे हुर तू तो मेरा भाई बन गया, दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है, लेकिन हुर आज मैं बहुत खुश भी हूँ, आज मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ, खुश इस बात पर हूँ तू बातिल को छोड़ के हक पर आ गया, जुल्मत को छोड़ के नूर पे आ गया, और शर्मिंदा इस बात पर हूँ कि कल दुश्मन बन के आया था तो तुझे तेरे सवारी के जानवर को भी पानी पिलाया, आज मेरा भाई बन के आ रहा है, मगर हुसैन एक पूजा आप तेरे लिए पेश नहीं कर सकता। और ने ये जुमला सुना, सारा जिस्म कांप उठा, उसको पता है ना कि सबसे बड़ा तो खताकार मैं हूँ। हाथों को जोड़ा, कहा मौला अपना यही गुनाह माफ कराने आया हूँ, और है मौला इसलिए मैं चाहता हूँ सबसे पहला मेरा जवान बेटा मरने जाए, जवान मरेगा तो बाप का गुनाह माफ होगा। हुसैन ने कहा हुर मैं वैसे तेरे बेटे को न जाने देता, लेकिन आज सबको मरना है, कोई पहले कोई बात है, जा मैंने इजाजत दी। अगर आखिरी जुमला कह रहा हूँ, हुर का बेटा गया, बाप ने कहा बेटा ऐसा जिहाद करना कि तेरे बाप का गुनाह माफ हो जाए। थोड़ी देर गुजरी, हुर का जवान घोड़े से गिरा, गिरते गिरते आवाज दी बाबा अदरिकनी जरा मेरी मदद को आइए, है तो जवान बेटा न। घबरा के हुर अपनी जगह से खड़ा हुआ, मक्कर की जानिब चलने लगा। हुसैन ने कहा हुर कहाँ जा रहे, कहा मेरा जवान मुझे आवाज दे रहा है, मुझे बेटे के सराहाने जाने दे। हुसैन ने कहा नहीं हुर तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं जाता हूँ। और क्यों जाता हूँ दो वजह बताए, तुम मेरे मेहमान हो आराम करो, मगर दूसरी वजह क्या है कि सुनो हुर, बूढ़े बाप जवान के लाशे पे नहीं जाते हैं, मैं तेरे बेटे का लाशा लेके आऊंगा। वहाँ का आखिरी जुमला आपसे कहना है, हुर का जवान बेटा घोड़े से गिरा, ये कहकर रोक दिया, बूढ़े बाप जवान का लाशा नहीं उठाते, लेकिन आका जब 18 साल का अली अकबर घोड़े से जमीन करबला पे गिरा, हाय ये बूढ़ा बाप किस तरह से जवान के लाशे को उठा रहा। अजरकुम अल्लाह परवरदिगारा, जिस तरह फातिमा ज़हरा और उनके लाल हुसैन के तसद्दुक में हुर का गुनाह माफ हुआ, हम में से हर गुनाहगार मोमिन और मोमिना के गुनाह को माफ फरमा। ऐ खुदा हमें हुर जैसी तौबा की तौफीक अता फरमा। ऐ खुदा इन मसाइब हुसैन और अकबर का वास्ता मजलिस में मौजूद मोमिनीन और मोमिनात और दुनिया भर में फैले हुए मुसलमानों को जालिमों के हर शर और मुसीबत से महफूज फरमा, और इन मजालिम के इंतकाम के लिए ज़ुहूर इमाम में ताजील फरमा।